मेरे युवा दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे सिविल सर्विस परीक्षा जो प्री के अभी एग्जाम हुए हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक दो छोटी छोटी घटनाएं हैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत नेपाल समझौता हुआ, 7 समझौते किए गए हैं। भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा हूं। आज अखबारों में काफी कुछ लिखा गया है कि किस तरह के 7 समझौते किए गए हैं। चूंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन आपको मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते चलना चाहिए, ये मेरा निर्देश है अगर आप ठीक समझते हो तो ये जो टॉपिक है उसको आप इसके माध्यम से अपडेट कर लें। क्योंकि अभी मुझे आप सबसे बात करने के लिए दूसरी बहुत सी सामग्री है, इसीलिए इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, ताजा ताजा है, आप देख लें। मैं आपको आज एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं दैनिक भास्कर का, किसान हित में है भंडारण विस्तार की योजना। कल आपको मालूम है कि मैंने भंडारण विस्तार योजना के बारे में विस्तार से बात की थी। अब आज देखिए कि उस पर एडिटोरियल कमेंट आ गया है, इसमें कुछ बहुत अच्छे डेटा दिए गए हैं। बेहतर होगा कि आप इन डेटा को नोट कर लें, इससे जो आपका उत्तर होगा वो ज्यादा ठोस हो जा पाएगा, ज्यादा तार्किक हो पाएगा। देखिए, जब मैं इस तरह के निर्देश देता हूं तो मान करके चलिए कि मैं एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपको यह भी बता रहा हूं कि तैयारी कैसे की जानी चाहिए। भले ही मैं एक टॉपिक को लेकर बात कर रहा हूं, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या ऐसा तरीका जो आप इसी टॉपिक के बारे में आपको और ज्यादा मजबूत बना सकता है, दूसरों से थोड़ा सा अलग कर सकता है, उसके बारे में भी बताऊं। तो दोस्तों, आपको खासकर मेरा जो डेली ऑडियो लेक्चर है थोड़ा ध्यान से तो सुनना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने सिटीज के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि इस पर हम लोग कल बात करेंगे, तो आइए इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, सिटीज 2.0 को मंजूरी दी है कार्यक्रम को। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये है सिटीज, CITIIS, सिटीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीज, सी का है सिटीज, इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे शहर हैं उन पर खर्चा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां खर्चे से लगा लीजिए। किस चीज के लिए खर्चा कर रहे हैं? सिटी के टू इनोवेट, इनोवेट करने के लिए क्या क्या नया किया जा सकता है, किस तरीके से चीजों को नया बनाया जाए। इंटीग्रेट, यानी कि कैसे एकीकृत किया जाए। एंड सस्टेन कहने का मतलब है कि कैसे हम अपने शहर को इस तरीके से डेवलप कर सकें कि वो लंबे समय तक बना रह सके। और जब हम कहते हैं लंबे समय तक बना रह सके, तो इसी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि धारणीय विकास, यानी कि पर्यावरण के साथ उसका लगातार संतुलन बना रहे, सह अस्तित्व के साथ दोनों मौजूद रहें, शहर भी और पर्यावरण भी। तो यह इससे संबंधित योजना है, कार्यक्रम है, जिसे हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, वो ये है कि इसमें कौन कौन भागीदार हैं, यानी कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भारत सरकार का इकलौता कार्यक्रम है, उसका कोई मंत्रालय कर रहा है, या इसमें दूसरी एजेंसीज भी हैं बाहर की जो जुड़ी हुई हैं। तो इसमें दूसरी एजेंसीज भी जुड़ी हुई हैं, उन एजेंसी का नाम आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब तैयारी के जो तरीके हैं उन्हें आपको थोड़ा सा बदलना होगा। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? मैं भारत सरकार के मंत्रालय को यहां छोड़ता हूं कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होगा, इसके बारे में आप खुद अनुमान लगाइए। कल मैंने आप सबसे एक प्रश्न पूछा था और मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने प्रश्न किया उसकी प्रशंसा में बहुत से मेल मुझे मिले और उन लोगों ने यह कहा है कि सर, आप इसी तरह से लगातार प्रश्न पूछते रहिए। तो आज का मेरा प्रश्न यह है कि ये जो सिटीज 2 जो कार्यक्रम मंजूरी दी गई है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भारत तो ही है, भारत सरकार है, और साथ ही साथ दूसरे देश भी हैं। तो जब हम कहते हैं भारत सरकार है, तो भारत सरकार कैसे होगी? भारत सरकार का कोई मंत्रालय इन्वॉल्व होगा। तो अब आपको सोचना है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है। और प्लीज आप सीधे गूगल पे मत चले जाइएगा, अखबार में मत ढूंढने लगिएगा, आप अपने दिमाग में ढूंढिएगा। तभी आपका दिमाग इस लायक बन सकेगा कि वो एग्जामिनेशन हॉल में उत्तर ढूंढ ले सकेगा, राइट? तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय होगा यह आपको निश्चित करना है। अब जो दूसरे एजेंसीज हैं उन्हें देख लीजिए। फ्रांस की है फ्रांसीसी विकास एजेंसी, पूरा अगर आपको नाम याद भी नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, फ्रांस याद रखिए। फिर है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन जिसे आप कहते हैं, जिसमें यूरोप के 27 देश हैं, पहले इंग्लैंड भी इसी में था लेकिन अब ब्रिटेन उससे बाहर हो गया है। और इसके बाद है राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, इनका यह संयुक्त कार्यक्रम है, राइट? तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बात है और वो ये है कि ये कहा गया है, खासकर हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने जब इस कार्यक्रम के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का जो एक उद्देश्य है वो ये है कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उसमें उन्होंने कहा सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। क्या आप जानते हैं कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? सर्कुलर का मतलब है वृत्त, एक गोल घेरा। तो ये सर्कुलर अर्थव्यवस्था क्या होती है क्या आपको मालूम है? अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर चुके हैं तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि सर्कुलर अर्थव्यवस्था क्या होती होगी? अनुमान लगा सकते हैं? और चलिए अगर आप अनुमान नहीं लगा सकते तो मैं आपको क्लू दे रहा हूं, है ना, आप अपने दिमाग को ट्रेंड करने की कोशिश कीजिए प्लीज, उसके बिना अब बात नहीं बनेगी। सर्कुलर अर्थव्यवस्था किसके बारे में कहा है हमारे मंत्री जी ने? ये जो सिटीज कार्यक्रम है इसके बारे में कि ये जब सिटीज कार्यक्रम लागू किया जाएगा तो इससे हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है इसको बढ़ावा मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि भई ये जो सिटीज कार्यक्रम में जो होना है, इनोवेट होना है, इंटीग्रेट होना है और सस्टेन होना है। हम अपने सिटी को इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो जब हम इस तरीके से चीजों को बनाएंगे तो उससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, कैसे उसको प्रोत्साहन मिलेगा। इन दोनों को जोड़ करके देखिए कि जो सिटीज जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है। थोड़े से डिटेल में जाइए कि इसके तहत क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाएगा उस पर मत जाइए, वो बाद में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, मैगजीन में मिल जाएगा। क्या क्या किया जा सकता है आप अपनी तरफ से सोचिए और जब उन सबको किया जाएगा तो उसका क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। और लेकिन पूरी इकोनॉमी पर नहीं, वो कह रहे सर्कुलर इकोनॉमी। आप खुद टेस्ट करके देखिए, इस पर आप विचार कीजिए अपनी तरफ से। शुरू में आपको दिक्कत होगी, झुंझलाहट भी होगी, लेकिन प्लीज सरेंडर मत कर दीजिएगा। अगर आप सरेंडर कर देंगे इसका मतलब है कि आपको एक अवसर मिला था प्रैक्टिस करने का और आपने वह अवसर खो दिया है। आप मुझे लिखिएगा, इसके बाद फिर सोमवार को हो सका तो मैं इस पर बात करूंगा कि कैसे आप इस पर विचार करके आप उन तथ्यों को निकाल सकते हैं जो अन्यथा आपने पढ़े नहीं हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पर आज बस इतना ही। मुख्य विषय के तहत मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आज आपसे एक दो मेल के बारे में बात करूंगा। दोस्तों एक मेरे पास जो मेल आया है ये मैं आप लोगों को स्पेशली पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ये मेल एक स्टूडेंट का है अजय कुमार का, और मजेदार बात यह है कि ये सर्विस में है, इन्होंने मेल लिखा है। इससे आप देखिए कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं या जो ये व्यक्तिगत जो रूप से जो ये स्टूडेंट हैं इनका माइंड किस तरीके का है। आप इसको देखिएगा, क्या ये किसी भी सिविल सर्वेंट का माइंड होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का तो काम ही है कि वो इस तरह के माइंड का चयन करे जो सिविल सर्वेंट बनने लायक हो, उसी के लिए एग्जामिनेशन एक माध्यम है। मैं उनका मेल पढ़कर सुना रहा हूं, सुनिए। आपको मैंने कितनी बार, हालांकि ये रोमन लिपि में ही लिखा है, उन्होंने हिंदी देवनागरी में नहीं लिखा है, जबकि मैं बार बार ये कहता हूं कि आप उसी भाषा में लिखिए जिस भाषा में आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मतलब मेरी बात सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती है उसकी चिंता नहीं है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही इसकी उन्हें बहुत चिंता है, झल्लाहट भी है, गुस्सा भी है। आपको मैंने कितनी बार बोला कि एमएलए के मत मूल्य वाला टॉपिक करा दो करा दो करा दो, बट आपने एक नहीं सुनी, नहीं सुनी और फिर प्रिलिम्स में वो क्वेश्चन आ ही गया। आप क्यों नहीं सुनते हैं किसी स्टूडेंट की बात? ये उनका मेल है। इस मेल पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए, क्या सच में इस मेल का कोई अर्थ है? क्या इस तरह के मेल लिखे जाने चाहिए? और अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपके दिमाग के किस तरह की प्रवृत्ति का सूचक है? क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को बताते हैं, याद रखिए कि आप उसी तरह से चीजों को रिसीव भी करते हैं, एक तरफा मामला नहीं होता है। तो दोस्तों प्लीज, मेरा ये कहना है कि हमारी जो एकेडमी है, हम इस एकेडमी की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं, इस एकेडमी को हम एक अलग स्वरूप देना चाहते हैं। और अगर किसी को इस तरह के ही मेल लिखने हों तो प्लीज लिखने से पहले थोड़ा सा विचार करें, और विचार करने के बाद ड्रॉप कर दें। आप अपनी शिकायतें लिखें, आप अपनी बात रखें। दूसरे मेल्स भी आते हैं जिनमें शिकायतें होती हैं, जिनमें वो अपनी तकलीफें लिखते हैं, अपनी परेशानी लिखते हैं। और मैं तो उन लोगों में हूं जो लगातार आप सबसे पूछता रहता हूं कि हाँ बताइए, और आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो उन्होंने कहा, रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में बताइए, तो मेरे पास तो रोज इस तरह के 5-7 क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि डेली ऑडियो लेक्चर में मैं करंट को लेकर के चलूं, या पूरा सिलेबस ही पढ़ाने लगूं डेली ऑडियो लेक्चर में? प्रेसिडेंट के चुनाव में पहले तो उन्होंने यही नहीं लिखा है कि किसके मूल्य बताऊं। चलिए कोई बात नहीं भाई, आप सही हो। देखिए प्रेसिडेंट के चुनाव में अगर एमएलए का मत का निर्धारण किया जाना है तो किताबों में दिया हुआ और बहुत ही सरल सा फार्मूला है। अगर आप इतना खुद नहीं अनुमान लगा सकते, खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं समझ सकते, तो आपको अपनी तैयारी करने के ढंग पर विचार करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराएं, जो दूसरों को दोषी बताएं। आप खुद की तरफ तो थोड़ी सी उंगली रख करके देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आप क्या चाहते हैं कि सारी चीजें आपको परस दी जाए, ज्यों का त्यों आप फिर उन चीजों का इस्तेमाल कर लें। यही तो इस परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप खुद क्या कर सकते हैं। रेसिपी बता दी गई है, आप खुद कुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये एक स्टूडेंट का मेल है, लेकिन खासकर इस मेल को मैंने इसलिए चुना है ताकि आप सब भी अपने अपनी सोच, अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी अभिव्यक्ति, इस पर विचार कर सकें और उस पर नियंत्रण भी रख सकें। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप मुझे लिख रहे हैं तो इस तरह से लिख रहे हैं, इंटरव्यू में भी आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर जाएंगे, चाहे एक ही शब्द क्यों नहीं बोल जाए, और जो मेंबर्स बैठे हुए हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे कि आपकी मानसिक संरचना क्या है। तो दोस्तों चूंकि अब वक्त हो चला है, इसलिए मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। अभी भी बहुत से मेल आ रहे हैं, इसलिए मैं किसी का भी नाम फिलहाल लेने की स्थिति में नहीं हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब अपनी अपनी तकलीफें, अपने अपने आक्रोश, अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी कमियां, अपने अपने स्ट्रेंथ, जो जो आपने किया उसके बारे में, जो जो आप नहीं कर पाए उनके बारे में आप सारी बातें मुझसे साझा कर रहे हैं। सच पूछे तो मुझे लिटरेट कर रहे हैं, मुझे इक्विप्ड कर रहे हैं, मुझे वो चीजें बता रहे हैं जो मुझे जाननी चाहिए, अन्यथा शायद मैं अगर जानता भी तो अनुभव के स्तर पर नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के अनुभव को मैं अनुभव कर सकता हूं। और डेफिनेटली आप लोग जो इस तरह के मेल लिख रहे हैं, इससे मुझे आगे जो भी डेली ऑडियो लेक्चर के स्वरूप में परिवर्तन करना है, यूपीएससी का जो पेपर आया उसे देखते हुए, आप लोगों की जरूरतों को देखते हुए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए भी मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अब इसे समाप्त करने की इजाजत दें। नमस्कार।